नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने। नवीनतम वैश्विक सर्वेक्षण में उन्हें 68% रेटिंग मिली। रेलवे अपनी संचार प्रणाली को उन्नत करेगा। स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच का कई क्षेत्रों में विस्तार करने की योजना। आंध्र प्रदेश में बस दुर्घटना में 13 लोगों की मौत। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने मानवीय और आर्थिक परिणामों का हवाला देते हुए पश्चिम एशिया संघर्ष को तुरंत समाप्त करने का आह्वान किया। देश भर में रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में चल रहे खेलो इंडिया जनजातीय खेलों में कर्नाटक ने 5 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीतकर पदक तालिका में वर्चस्व स्थापित किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में स्थान दिया गया है। अमरीकी डेटा एनालिटिक्स फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए नवीनतम वैश्विक सर्वेक्षण में उन्हें 68% रेटिंग प्राप्त हुई है। 2 से 8 मार्च के बीच किए गए इस सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री मोदी अन्य वैश्विक नेताओं से काफी आगे हैं। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलिन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मेंग दूसरे स्थान पर हैं। दोनों को 62% रेटिंग मिली है। चेक गणराज्य अर्जेंटीना के नेताओं को क्रमशः 57% और 56% रेटिंग प्राप्त हुई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 39% अनुमोदन रेटिंग मिली और वे शीर्ष 10 में शामिल नहीं हो सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। इसे लगभग 11,200 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा परियोजनाओं में से एक है। इस हवाई अड्डे का उद्घाटन भारत के वैश्विक विमानन केंद्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हवाई अड्डा उन्नत कार्गो प्रणाली से सुसज्जित है। इससे प्रतिवर्ष 2.5 लाख मीट्रिक टन माल की ढुलाई की जा सकेगी, जिसे लगभग 18 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाया जा सकता है। रेलवे ने अपनी संचार प्रणाली को उन्नत करने और कवच स्वचालित रेलगाड़ी सुरक्षा प्रणाली को विस्तारित करने के लिए 1200 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। रेल मंत्रालय ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य उन्नत फाइबर संचार प्रणालियों और बेहतर सुरक्षा तंत्रों के माध्यम से रेलवे नेटवर्क को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि मध्य रेलवे के सभी 5 डिवीजनों में 600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से एक मजबूत दोहरे फाइबर संचार नेटवर्क की स्थापना के लिए 2 प्रमुख परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये प्रणाली गंभीर परिस्थितियों में स्वचालित रूप से ब्रेक लगाकर ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए डिजाइन की गई है और व्यस्त मार्गों पर परिचालन सुरक्षा को बढ़ाएगी। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने देश भर में स्टार्टअप, नव प्रवर्तकों और उद्यमियों को सहयोग देने के लिए क्राफ्टन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य मनोरंजन, ऑनलाइन गेमिंग, ई स्पोर्ट्स, मीडिया और AI आधारित प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देना है। क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष एस राधा चौहान ने कहा है कि क्षमता निर्माण आयोग के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 2 से 8 अप्रैल तक साधना सप्ताह मनाया जाएगा। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि लोक सेवकों में विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए आवश्यक आंतरिक क्षमता और सेवा भावना हो। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आंध्र प्रदेश में आज सुबह मार्कपुरम जिले के रायवरम के पास एक निजी बस और ट्रक की टक्कर में 13 लोग जलकर मर गए और 22 अन्य घायल हो गए। दोनों वाहन आग में पूरी तरह जल गए। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अधिकारियों से बात कर दुर्घटना के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारियों से घायलों के सर्वोत्तम उपचार सुनिश्चित करने को कहा। श्री नायडू ने दुर्घटना की गहन जांच और रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव और जेल महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। पिछले 4 वर्ष में राज्य के विभिन्न जेलों में कथित तौर पर 285 कैदियों की मौत के मामले में आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए यह नोटिस जारी किया। आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार राज्य के जेलों में कैदियों की संख्या अत्यधिक है, जिससे उनमें संक्रमण और मानसिक तनाव बढ़ रहा है। निर्वाचन आयोग ने असम, केरलम, पुदुच्चेरी और 4 अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनावों के लिए नामांकन पत्रों की जांच पूरी कर ली है। इन राज्यों में 9 अप्रैल को मतदान होगा। आयोग ने कहा है कि जांच के बाद 2,140 उम्मीदवार मैदान में हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था अच्छा प्रदर्शन कर रही है। श्री रिजिजू ने कहा कि भारत ऊर्जा संसाधनों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है और अपने ऊर्जा संकट से निपटने के लिए प्रबंध कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारतीय जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित रूप से गुजर रहे हैं।
If our ships are passing through Strait of Hormuz,
हमारे कुछ जहाज होर्मुज पार कर चुके हैं और कुछ करने वाले हैं। ये भारत की स्थिति को दर्शाता है। भारत कुछ चुनिंदा देशों में शामिल हैं जो सभी पक्षों से बात कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री, ईरान के राष्ट्रपति और खाड़ी देशों के प्रमुखों से बात की है। भारत चुनौतियों के बावजूद बहुत ही बेहतर स्थिति में है।
पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच एलपीजी की खेपों के आने से लोगों को राहत मिली है। एलपीजी ले जाने वाला पोत अपोलो ओशन कल रात करीब 8 बजे नए मंगलौर बंदरगाह पर पहुंचा और उसी समय माल उतारने का काम शुरू हो गया। बंदरगाह अधिकारियों ने संकेत दिया है कि कच्चे तेल के 2 और टैंकर जल्द ही आने की संभावना है, हालांकि उनके कार्यक्रम की अभी पुष्टि नहीं हुई है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराग्ची ने कहा है कि ईरान ने भारत, चीन तथा रूस सहित कई अन्य मित्र देशों को होर्मुज जलडमरू मध्य का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। ईरान के इस महत्वपूर्ण जलमार्ग को रोकने के बाद से दुनिया भर में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है। इस मार्ग से विश्व के लगभग 20% प्राकृतिक ईंधन की ढुलाई होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जलमार्ग न खोलने की स्थिति में गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। ईरान के विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ईरान के विरोधी देशों के जहाजों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत ने पिछले कुछ सप्ताह में पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के लिए कई राजनयिक प्रयास किए हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतरश ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष का सबसे अधिक प्रभाव गरीब और कमजोर लोगों पर पड़ रहा है। उन्होंने तुरंत संघर्ष समाप्त करने का आह्वान किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुतरश ने कहा कि संघर्ष के परिणाम उन नागरिकों को भुगतने पड़ रहे हैं जिनकी इसमें कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कहा कि कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन ही इस संकट का एकमात्र समाधान है। एक अन्य सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गुतरश ने होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही बाधित रहने पर भी चिंता व्यक्त की। बांग्लादेश आज 56वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 26 मार्च 1971 को आज के ही दिन बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। एक रिपोर्ट।
बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन और प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने आज सुबह ढाका के पास स्थित राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने 1 मिनट का मौन रखा जबकि सशस्त्र बलों के जवानों ने राजकीय सलामी दी। पाकिस्तानी सेना द्वारा ऑपरेशन सर्च लाइट के तहत की गई सैन्य कार्रवाई के बाद बांग्लादेश को 1971 में 9 महीने के युद्ध के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई और 16 दिसंबर को उसे विजय प्राप्त हुई। इसी बीच भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर बांग्लादेश को हार्दिक शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई संबंधों पर प्रकाश डाला और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने तथा क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। आकाशवाणी समाचार ढाका से नवल संघ परमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दीपेंद्र कुमार।
नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रतिनिधि सभा के वरिष्ठ सदस्य के रूप में अर्जुन नरसिंह केसी को शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति कार्यालय में आयोजित समारोह में शपथ दिलाई। अर्जुन नरसिंह केसी 5 मार्च को हुए प्रतिनिधि सभा चुनाव में नेपाली कांग्रेस से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत चुने गए थे। श्री केसी 26 मार्च को प्रतिनिधि सभा के अन्य सभी 274 सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। बालेंद्र शाह के 27 मार्च को शीतल निवास में नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने की उम्मीद है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी नेपाल में सबसे बड़ी पार्टी रही है, जिसने 182 सीटों के साथ भारी बहुमत हासिल किया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर 2 दिन के फ्रांस दौरे पर हैं। वे वहां G7 सहयोगी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि डॉ जयशंकर एवे डेस वॉक्स डे सरने में आयोजित बैठक के इतर विदेश मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। देश में आज रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है।
लोकाभिरामं रणरंग धीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपं करुणाकरं तं श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। समूचे देश में आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव रामनवमी धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। श्री राम का जीवन सत्य, धर्म और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री राम ने सदैव मर्यादा को धारण किए रखा। रावण के साथ युद्ध के समय श्री राम ने जनमानस को संदेश दिया कि चाहे आपके पास जीवन रूपी युद्ध में लड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन हो या ना हो, लेकिन आपके पास सत्य और धीरज का धन है तो आप सहजे ही जीवन संग्राम में विजय प्राप्त कर सकते हैं। रामनवमी का पर्व हमें जीवन में सच्चाई, कर्तव्य और धर्म का पालन करने की शाश्वत शिक्षा देता है। आकाशवाणी की ओर से सभी श्रोताओं को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चैत्र नवरात्र के 8वें दिन आज मां महागौरी का आशीर्वाद लिया। संस्कृत सुभाषितम को साझा करते हुए श्री मोदी ने प्रार्थना की कि मां महागौरी की दिव्य आभा सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लाए। हमारे श्रृंखला पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी की अगली कड़ी में हम ओडिशा के श्री महेंद्र कुमार मिश्रा से बातचीत करेंगे। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर आज शाम 5:10 पर होगा। छत्तीसगढ़ में हो रहे खेलो इंडिया जनजातीय खेलों के दूसरे दिन रायपुर में तैराकी, भारोत्तोलन, हॉकी और फुटबॉल के मुकाबले हो रहे हैं। पदक तालिका में कर्नाटक 5 स्वर्ण और 2 रजत पदक के साथ प्रथम स्थान पर है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता बने। नवीनतम वैश्विक सर्वेक्षण में उन्हें 68% रेटिंग मिली। रेलवे अपनी संचार प्रणाली को उन्नत करेगा। स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच का कई क्षेत्रों में विस्तार करने की योजना। आंध्र प्रदेश में बस दुर्घटना में 13 लोगों की मौत। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने मानवीय और आर्थिक परिणामों का हवाला देते हुए पश्चिम एशिया संघर्ष को तुरंत समाप्त करने का आह्वान किया और देश भर में रामनवमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।